यह श्लोक संख्या 10 अध्याय का शीर्षक आप जानते हैं, कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। ब्रह्मणी आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भस। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पार कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। माइक होगा एक कॉर्डलेस माइक दे। यहाँ पर हाँ यहाँ से पढ़ लिए ये पढ़िए इस सबका अनुवाद और तात्पर्य सबका पढ़िए 10-11 बार आपको अनुवाद और तात्पर्य पढ़ के सुनाएंगे आप ध्यान से सुनेंगे।
हेलो
माइक ऑन करिए प्लीज।
हरे कृष्ण श्लोक नंबर 10 अनुवाद। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा यहाँ पर ब्राह्मणी का अर्थ कृष्ण भावना अमृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के तीन गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्व होत ब्रह्म तस्माद एत ब्रह्म नामरु पमंत्र च जायते तथा भगवद्गीता में से ये प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप से में प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। ईशा उपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परम ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावना अमृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवद गीता 3:30 में कहा गया है मई सर्वाणि कर्माणि संन्यास संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावना अमृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। श्लोक नंबर 11 अनुवाद। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तात्पर्य जब कोई कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है भले ही वह तथा कथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और ना यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं। यही कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था है। श्लोक नंबर 12। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं रहता और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है, कृष्ण भावना अमृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावना अमृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावना अमृत में जीव शांति से पूरित रहता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावना अमृत का रहस्य है। यह अनुभूति की कृष्ण की अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है।
हरे कृष्ण। तो यह अध्याय जो है कर्मयोग का अध्याय, कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी कि निष्काम कर्मयोग की व्याख्या की है भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में। इससे पहले के अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में चर्चा किया था। तो दिव्य ज्ञान में और निष्काम कर्म योग में कोई वास्तव में भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं। दोनों का उद्देश्य यही है, भगवान की सेवा करना। यानी कि कर्म योग के माध्यम से, यानी कि हम कर्मों के जो फल हैं जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है हम अपना जो शाश्वत संबंध है भगवान के साथ उसको ठीक ठीक समझ पाते हैं। यह दिव्य ज्ञान है, यही है वास्तव में दिव्य ज्ञान, कि हम जान सकें कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है और हमारा उससे संबंध क्या है, और समझ जाने पर हमें क्या करना है, सेवा करनी। तो यहां पर जो बताया है भगवान ने दसवें श्लोक में कि बिना आसक्ति के कर्तव्यों को निभाना और अपने जो परिणाम है उनको निछावर करना भगवान की सेवा में, तो इस तरह क्या फल मिलता है? हम हर प्रकार के पापों से छुटकारा पाते हैं। उदाहरण बड़ा अच्छा दिया गया है यहाँ पर भगवान ने, पद्म पत्रम इवाम भसा, जल में कमल का फूल होता है, कमल देखा होगा आपने, और जल में देखा आपने कमल तो आप देख सकते हैं कि कमल जो है वो जल में रहते हुए उसकी पंखुड़ियां नहीं भीगती हैं, उसका नाल जरूर होता है जल में लेकिन उसकी पंखुड़ियां जो है वो जल के अंदर नहीं होती हैं, जल के ऊपर होते हैं। तो कहने का मतलब यह है अगर उस पंखुड़ी में जल गिर भी जाता है तो अधिक समय तक वो जल रहता नहीं। जो कमल का जो पत्ता होता है वो थोड़ा वैक्सी होता है, तो वैक्सी होने के कारण क्या है, उसमें जल टिकता नहीं। अब जल डालेंगे एकदम कुछ ही देर में फिसल के नीचे गिर जाएगा। तो इसी तरह से जो योगी होते हैं अपने कर्तव्य को जब करते हैं तो अनासक्त होकर कर्म करते हैं, क्योंकि जब हम कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा। लेकिन कला यह है कि उन फलों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। ये जो अध्याय है दिव्य ज्ञान का और ये जो अध्याय है कृष्ण भावना भावित कर्म का, भगवान का उद्देश्य ये है कि इस अध्याय के माध्यम से भगवान जो हमें भक्ति योग के धरातल पर लाना चाहते हैं। इसलिए ये संदेश यहां दे रहे हैं कि अनासक्त होकर हमें जो है कर्म करना होगा, कृष्ण भावना भावित कर्म, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा कृष्ण भावना का अनुशीलन होता है। मन के द्वारा हम लोग भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं, उनके संदेश का चिंतन करते हैं, इसको कहते हैं मन के द्वारा कृष्ण भावना का अनुशीलन। वाणी के द्वारा हम लोग भगवान की कीर्ति का गुणगान करते हैं या भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं, उनकी लीलाओं का गुणगान करते हैं, या फिर हम लोग प्रचार के कार्य में लगते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वाणी के द्वारा कृष्ण भावना का अनुशीलन। फिर है शरीर के द्वारा कृष्ण भावना का अनुशीलन। शरीर यानी कि इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएं, समस्त इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियां जो है ये भी भगवान की संपत्ति है। यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में जगह ईशोपनिषद से श्लोक कोट कर रहे हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत के चंद्र जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्र कस्य सद्यनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम का मतलब है जो भी आप देख रहे हैं वो सब भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब जो भी आप देख रहे हैं वो सब भगवान का है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां घृत कस्य स्वतन, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। तेन त्यक्तेन भुंजिता का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कई बार भक्त लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, आपने देखा होगा जैसे सन्यासी हैं या गुरु हैं वो कृपावश क्या करते हैं, भक्तों के लिए क्या करते हैं, कुछ प्रसाद छोड़ देते हैं, महाप्रसाद। तो छोड़ने का उद्देश्य क्या है, छोड़ने का उद्देश्य नहीं कि वो अपना झूठा खिलाना चाहते हैं सबको, ये उद्देश्य नहीं। छोड़ने का मतलब है ये वैराग का प्रदर्शन है, ये वैराग प्रकट करता है कि उनको इतना को दिया गया लेकिन वो उतना ही लेंगे जितना कि वो ग्रहण कर सके और बाकी वो अन्य लोगों को दे देते हैं। इसलिए नहीं कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए हाँ जी हम प्रसाद सबको बांटेंगे आज, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य होता है दया का, उद्देश्य होता है कृपा का, उद्देश्य होता है कि इस प्रसाद का और भी कोई अधिकार, और भी किसी को अधिकार है, और भी किसी को मिलना चाहिए प्रसाद। तो ये वैराग प्रकट होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार कहने का अर्थ ये है कि शरीर के द्वारा कृष्ण भावना का अनुशीलन होना चाहिए, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, निरंतर भगवान की सेवा में लगाए रखना। कि जब ऐसा हम करते हैं तो फिर ऐसा जो जीव है, ऐसा जो भक्त है, वो इस संसार का नहीं रह जाता, वो फिर कहां का होता है, यहां का नहीं होता, आध्यात्मिक जगत का होता है। यहां रहते हुए भी वो मुक्त अवस्था में होता है, क्योंकि उसने अपने कर्म के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान की सेवा में। तो कहीं अगर कोई गृहस्थ आश्रम में भी है, वो अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा कर्म फल को भगवान को अर्पित करके कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, दिव्य ज्ञान के धरातल पर आया जा सकता है। दिव्य ज्ञान का धरातल मतलब यह है कि हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये जीवात्मा हूं। कब तक मैं देहात्म बुद्धि में रहूंगा, तो इससे इस बात को अनुकूल करने के लिए, यानी कि इस बात को एहसास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फल को अर्पित करना पड़ेगा भगवान की सेवा में। और इस अर्पण को भी यज्ञ कहा गया। इस यज्ञ को अगर निभाते हैं सही भावना से, सही दृष्टिकोण से, तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम यह होगा कि हम लोग दिव्य ज्ञान जागृत कर पाएंगे, हमारी चेतना में दिव्य ज्ञान जागृत होगा, कि वास्तव में मैं थोड़ा कुछ दे रहा हूं कृष्ण की सेवा में, लेकिन बाकी जो बच्चा वो भी तो मेरा नहीं है। इस तरह की अनुभूति आने लगती है देने से। क्यों कहते हैं कि आप जो कमा रहे हैं या आपके पास जो समय है वो निकाल के आप मंदिर आइए, या जो आप कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा आप सेवा में लगाइए, मंदिर की सेवा में लगाइए, या प्रसाद बंटवाइए, या ग्रंथ बंटवाइए। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति जो है उससे उस फल को देने से वो उस कर्म बंधन से छुटकारा पाता है, कर्म बंधन से छुटकारा पाता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम कोई भी कुकर्म करें या दुष्कर्म करें और फल जो है भगवान की सेवा में लगा दें। ये कहे कि भगवान ने गीता में कहा है और इससे मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तो ये भावना जो है फिर सहायक नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी भगवान कपिल देव की शिक्षाओं में एक तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान को हम घूस नहीं देख सकते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त आप प्रयच्छति। तो हम भगवान को जाकर राधा पार्षद को ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपको पत्ता फूल फल जल दे रहे हैं, बदले में आप क्या देंगे। तो ये घूस नहीं चलता है, ये व्यापार नहीं है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन में होता है ना, वह एक दूसरे को खुश करने के लिए हम कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं, लेते भी रहते हैं। लेकिन जब हम मंदिर आते हैं, राधा पार्षदी का दर्शन करते हैं, तो ये भावना नहीं रहती है कि हमने आपको ये दिया है, आप हमें क्या देने वाले हैं, और अगर आप हमें नहीं देंगे तो हम क्यों दें आपको। आपने कुछ दिया नहीं पिछले एक साल से, हम आपको हर रविवार या मंगलवार को आते हैं आपके पास, कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाते हैं, बदले में क्या दिया आपने? दुख। पिछले एक साल से मैं दुखी हूं, जब से भक्ति में लगा हूं, कृष्ण भक्ति में आया हूं, तब से समस्या शुरू हो गई। घर में झगड़ा शुरू हो गया, ऑफिस में झगड़ा शुरू हो गया, हर जगह से प्रेशर है, ऑफिस वाले प्रेशर डाल रहे हैं, घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, मंदिर से भी प्रेशर है। और कहां नहीं है प्रेशर। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम इस प्रेशर को कृष्णा कॉन्शियस बना देते हैं तो फिर हम कर्म बंधन से छुटकारा पाते। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो हमें बंधन में डालने वाला है अगर उस फल को हम भगवान की सेवा में नहीं लगाए। इसलिए बहुत जरूरी है। तो जब फल को अर्पित करता है एक साधक, एक योगी, एक भक्त, तो जब फल को अर्पित करता है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसको अनुभूति होती है, एहसास होता है कि वास्तव में मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ क्या है? भगवान का। ध्रुव महाराज का देखिए, ध्रुव महाराज जंगल में गए थे ध्यान लगाने के लिए, 6 महीने में उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर दिया, और आखिरी जो छठा महीना था, 5वां महीना था, उसमें तो केवल उन्होंने क्या किया, 5वें महीने में उन्होंने श्वास को अपने मन काबू में कर लिया। प्राणायाम की विधि से उन्होंने क्या, श्वास को अपने काबू में कर लिया। वहां बता रहे हैं कि जो यूनिवर्सल ब्रीदिंग है उसको उन्होंने इनहेल किया, विश्व की जो श्वास है, पूरे सृष्टि की जो श्वास है उसको अंदर ले लिया उन्होंने। और इतनी शक्ति थी उनमें, ध्रुव महाराज में, कि ब्रह्मांड में जो श्वास था, ब्रह्मांड का जो श्वास है उसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, पूरे ब्रह्मांड में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया उनकी तपस्या से। और उनकी तपस्या से देवी देवता घबरा गए, क्योंकि सबके जो है सांस घुटने लगे, सांस लेने के लिए कुछ था ही नहीं, सब ध्रुव महाराज ने ले लिया अपने अंदर, अपने शरीर के भीतर सबको ले लिया। 6 महीने के अंदर 5 साल का बालक देखिए क्या उसके अंदर ध्रुव इच्छा थी, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने की ध्रुव इच्छा थी। उसके लिए क्या किया ध्रुव महाराज ने, संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया। लेकिन वो प्रारंभ में आए थे तो एक व्यापारी की तरह ही आए थे। उनकी माता ने कहा था कि इन्होंने कहा था, उनकी सौतेली मां ने कहा था, जो उनको रोक रहे थे वो पिता के गोद में जाके बैठना चाहते थे, महाराज उत्तरपाद की गोद में बैठना चाहते थे, उनकी सौतेली मां ने उनको बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम यहां बैठ सकते हो। तो धुर महाराज को बहुत गुस्सा आया और वो अपने सगी माँ के पास गए। सगी माँ ने कहा कि एक बात तो है कि उन्होंने तुम्हें प्रार्थना करने के लिए कहा भगवान से, जाओ भगवान से प्रार्थना करो, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहा, यह बड़ी अच्छी बात है, तो भगवान से प्रार्थना करें। भगवान कहाँ मिलते हैं? अक्सर उन्होंने कहा कि जो ऋषि मुनि है वो जंगल जाते हैं, तपस्या करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। सतयुग में ऐसा था वातावरण, लोग पहाड़ों में जाते थे, जंगल में जाते थे और वहां जाके ध्यान लगाते थे, तपस्या करते थे। उस समय संभव था, सतयुग की घटना है, स्वयंभू मनवंतर की घटना होगी। तो उस समय ध्रुव महाराज जब गए तो 6 महीने लगातार जब तपस्या की, 6ठे महीने जो है उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल ब्रीथिंग को चोकअप कर दिया, पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया। देखिए क्या पावर था उनके अंदर। तो देवी देवता लोग जो है भगवान के पास गए घबरा के, उन्हें कहा भगवान हमारी रक्षा करिए, हम सब का सांस घुट रहा है, पूरे सृष्टि में कहीं प्रलय ना आ जाए, कुछ हो ना जाए। उनका आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग शांतिपूर्वक जो है अपने अपने स्थान में जाए, ये सब एक मेरे भक्त की तपस्या की वजह से हो रहा है। एक भक्त की तपस्या की वजह से पूरे सृष्टि में हालत हो गई, बताइए। तो प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में लिख रहे हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य दिया प्रभुपाद ने, आप जरूर पढ़िएगा इसका, चौथे स्कंद में भागवत के प्रभुपाद दे रहे हैं तात्पर्य में कि एक शुद्ध भक्त जब वो तपस्या करता है, ये जो भजन करता है, तो फिर उसके तपस्या का प्रभाव ये होता है कि जहां रहकर भी वो भजन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसका प्रभाव जो है पूरी सृष्टि में पड़ता है। अपनी चेतना के द्वारा, अपनी भावना के द्वारा ऐसे जो शुद्ध भक्त है पूरे सृष्टि को कृष्ण भावना भावित बना सकता है एक ही स्थान में रहकर। ये प्रभुपाद तात्पर्य में देखिए कि क्या शक्ति है एक भक्त में। तो प्रभुपाद चाहे तो वृंदावन में रह सकते थे, लेकिन प्रभुपाद ने कृपा करके व्यक्तिगत संग देने के लिए प्रभुपाद इंडिया से जो है अमेरिका चले गए। तो ध्रुव महाराज के बारे में बता रहे थे कि प्रारंभ में उनकी इच्छा क्या थी, वो साम्राज्य चाहने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि महाराज उत्तानपाद किसके पुत्र हैं, स्वयंभू मनु के पुत्र थे, और स्वयंभू मनु जो है ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी के पोते थे महाराज उत्तानपाद, उनके पुत्र थे ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज ने क्या प्रार्थना की थी, उन्होंने क्या विचार किया था कि ब्रह्मा जी से भी ऊंचा राज्य प्राप्त कर करूंगा। अब ब्रह्मा जी से ऊंचा तो किसी का राज्य है ही नहीं इस सृष्टि में। अब उन्होंने ये इच्छा तो प्रकट कर ली, लेकिन जैसे जैसे वो ध्यान में लगे और जैसे जैसे वो पवित्र होने लगे, उनकी इंद्रियां पवित्र होने लगी, मन पवित्र होने लगा, चेतना शुद्ध हो गई, तो वो भूल भी गए थे कि किस उद्देश्य से आए थे। उनका अब एक ही उद्देश्य था, भगवान का दर्शन करना। और जब ध्यान की अवस्था में पहुंचे तो परमात्मा का दर्शन कर रहे थे। परमात्मा का जो दर्शन कर रहे थे, अचानक क्या हुआ, एक दिन एक समय ऐसा हुआ कि अचानक उनका दर्शन बंद हो गया और उन्हें आंखें जैसी खोली तो सामने भगवान खड़े, और भगवान जो है शंख लेके ध्रुव महाराज के उन्होंने सर पर रखा। ध्रुव महाराज समझ नहीं पा रहे थे भगवान को देखे कि क्या कहें, उनको देखकर क्या बोले। तो भगवान ने जान के सर पर शंख रखा और ध्रुव महाराज जो है फिर बोलने लग गए, स्तुति करने लग गए। और वहां लिखा है कि ध्रुव महाराज हालांकि वो तपस्या कर रहे थे, भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाह रहे थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ध्रुव महाराज का दर्शन करने के लिए भगवान आए मधुवन में। भागवत में ऐसे लिखा है कि ध्रुव महाराज का दर्शन करने के लिए भगवान जो है मधुवन में आए, उनको देखने के लिए। ये भक्ति का प्रभाव है। एक कहने की बात यह है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में हमारी इच्छा हो सकती है भौतिक, हम भौतिक उद्देश्य से आए, भले ही आते हों मंदिर में, और कुछ फल हम त्यागते भी हैं, और काफी परसेंटेज तो हमारे पास ही रहता है नहीं, लेकिन ऐसे फल को अर्पित करते करते क्या होता है, सकाम कर्म योग से हम निष्काम कर्म योग की स्थिति में आते हैं। क्या डिफरेंस इसका मतलब? सकाम कर्म योग का मतलब है कि कुछ फल ही हम लोग त्यागते हैं, सारा फल नहीं त्यागते। फल से अभी भी आ सकती है और कर्म से भी आ सकती है। निष्काम कर्म योग में क्या होता है, उस लेवल में क्या होता है, ऐसा फल त्यागने से कोई व्यक्ति निष्काम कर्म योग के लेवल पर पहुंचता है और वहां पे वो फल से अनासक्त हो जाता है, फिर वो केवल कर्म से आसक्त रहता है, वो अपने कर्म से आसक्त रहता है लेकिन फल से बिल्कुल वो अनासक्त रहता है। ऐसा निष्काम कर्म योग जो है उस साधक को भक्ति के धरातल पर लेकर आता है, यानी कि दिव्य ज्ञान उसको प्राप्त होता है। ये प्रोसेस है। अब समझो इस प्रोसेस को, प्रोसेस कैसे वर्क करता है। तो जैसे जैसे हम रिजल्ट ऑफर करते जाते हैं, भगवान क्या करते हैं, अपना कार्य शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ देंगे भगवान कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए। और भगवान क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो कृपा करते हैं भगवान एक भक्त के ऊपर, वो ये है कि उसके कर्म बंधन को काटते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु जब भक्ति भाजा, आप कुछ भी अर्पित करेंगे भगवान को जाने अनजाने में, वो आपको सुकृति निश्चित रूप से देगा। और ऐसी सुकृति जो है वो भक्ति से संबंधित है, इसको भक्ति उन्मुखी सुकृति कहते हैं। और ज्ञान जानकर होता है, श्रद्धा युक्त तो होता है, तो फिर ऐसी श्रद्धा ऐसी भक्ति जो है वो फिर शास्त्रीय श्रद्धा मानी जाती है। और गुरु साधु और शास्त्र के सानिध्य में रहकर जैसे जैसे हम फल को अर्पित करते हैं और साधन भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं अनासक्त भाव से, तो होता क्या, धीरे धीरे फिर हम अनुभूति करते हैं कि वास्तव में ये सब कुछ जो है वास्तव में कृष्ण का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो इस रियलाइजेशन में आने में समय लगता है, एकदम नहीं होता है ना, ये अनुभूति करने में समय लगता है, लेकिन अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे हम। तो इसलिए हमें प्रारंभ तो कहीं करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। और जो मंदिर आते हैं हमें कुछ ना कुछ राधा प्रसाद जी की भेंट में लाना चाहिए, खाली हाथ कभी मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है मंदिर जाने का। भले आप एक ग्लास मिनरल वाटर लिया है या कम से कम तुलसी का दल लिया है, एक गुलाब का फूल लिया है, खाली हाथ मंदिर आना जो है वो ठीक नहीं माना जाता। तो एक कहने का मतलब यह है कि अपना प्रेम अपनी श्रद्धा अर्पित करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। और अन्य तरीके हैं, जैसे भगवान के सामने कीर्तन करना, भगवान के बारे में सुनना, भागवत कथा का श्रवण करना, भगवत गीता का श्रवण करना, ये सब जो है बेसिकली क्या है, यज्ञ ही है। इस तरह से हमारी इंद्रियां जो है पवित्र होती हैं और शुद्ध होती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे प्राचीन समय में, जैसे महाराज परीक्षित हुए, अम्बरीश महाराज हुए या ध्रुव महाराज हुए, अच्छा ध्रुव महाराज को दर्शन देने के बाद भी जानते हैं ध्रुव महाराज ने 36,000 साल राज्य किया, 36,000 साल राज्य किया है भगवान का दर्शन करने के बाद भी। तो ऐसा नहीं है कि हमने भगवान का दर्शन कर लिया है अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब भगवान का साक्षात दर्शन किया ध्रुव महाराज ने, लेकिन फिर भी क्या है, ध्रुव महाराज फिर भी राज्य कर रहे थे 36,000 साल। आसक्ति बिल्कुल नहीं है, ना राजा होने की आसक्ति है ना फल से आसक्ति है, लेकिन क्या है, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है, उस आदेश का पालन करने के लिए ध्रुव महाराज ने राज्य किया। प्रहलाद महाराज ने भी इसी तरह से राज्य किया, प्रहलाद महाराज ने राज्य किया, ध्रुव महाराज ने राज्य किया। प्रहलाद महाराज के पुत्र कौन थे, विरोचन थे, विरोचन के पुत्र कौन थे, बलि महाराज थे। तो प्रहलाद महाराज ने भी राज्य किया, अम्बरीश महाराज ने भी राज्य किया, अम्बरीश महाराज लेकिन साल में आप जानते हैं एक बार जरूर वो जाते थे ब्रज में, जाते थे वृंदावन जाते थे, अम्बरीश महाराज जो है छुट्टी लेकर जो है ब्रज में जाया करते, अपने मंत्रियों को राज्य का कार्यभार समर्पित करके सौंप कर महाराज अम्बरीश जो है ब्रज में जाया करते थे, मथुरा जाते थे, और वहीं पे उनकी भेंट दुर्वासा मुनि से हुई थी। वो तो आए थे वहां भजन करने के लिए, है ना, लीला स्थलियों का दर्शन करने के लिए, लेकिन भेंट उनकी हो गई किससे? दुर्वासा मुनि से हो गए। वो कथा तो केरला कथा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये थे बड़े बड़े राजा महाराजा थे, राज्य अपना कर रहे थे साथ साथ, लेकिन वो भक्ति भी कर रहे थे। परीक्षित महाराज देखे, परीक्षित महाराज को जैसे ही पता चला कि मृत्यु उनके निकट आने वाली है, उन्हें साम्राज्य त्याग कर जो है गंगा जी के तट पर चले गए भागवत कथा सुनने के लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन के अंत काल में इस प्रकार की स्थिति में हम पहुंच सके, इसके लिए क्या करना होगा? आज से और अभी से इसकी तैयारी करनी होगी। तो यही तैयारी है कि हम लोग सकाम कर्मयोग से निष्काम कर्मयोग में आए, निष्काम कर्मयोग से फिर हम लोग भक्ति योग की तरफ बढ़ाए। तो ये प्रोसेस है। तो यहां पर इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, भगवान उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण कितना देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण दिया भगवान ने, एक कमल का उदाहरण दिया। इसलिए भगवद गीता या भागवत वो लोग और अधिक अच्छा समझ पाते हैं जो वास्तव में प्रकृति के नजदीक रहते हैं या गांव में रहते हैं, जिन्होंने कमल देखा है। जिन्होंने कमल देखा ही नहीं उनके लिए उदाहरण समझना बड़ा मुश्किल है। जिन्होंने कमल देखा है, उसमें जल डाल के देखा है, जल को गिरते हुए देखा है, वो तुरंत समझ आएंगे भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन शहर में रहते रहते हमें कमल का दर्शन ही नहीं होता। ना ऐसे सरोवर है, ना ऐसे कमल है, कूड़ा है और कौवे हैं। तो वहां पर ये दिखाई नहीं पड़ता है, शहरों में नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन कमल वहां होते हैं जहां पर सरोवर होता है, सात्विक वातावरण होता है, जहां पे हंस घूम रहे हैं, सरोवर है, कमल खिल रहा है एकदम से, है ना, कमल से खुशबू भी आती है। आजकल के कमल ऐसे खुशबू भी नहीं आती उसमें, कमल से खुशबू भी आती है। तो उसमें अगर जल गिरता है तो आप जल को गिरते हुए देख सकते हैं कि जल जो है कुछ समय तक ही रहता है। तो इससे पता चलता है कि अनासक्त होने की भावना कमल प्रकट कर रहा है। जल में रहते हुए भी वो जल के साथ उसकी कोई आसक्ति नहीं है। तो इसी तरह से जब हम फल को समर्पित करते हैं, कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमें संसार से अनासक्त होने लगते हैं। ये इसका मतलब समझने का तरीका है। और इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, या यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्ता से उच्यते। तो ऐसे व्यक्ति को रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो मन वाणी और बुद्धि के द्वारा या कर्म के द्वारा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उस जगत में तो है लेकिन जगत में होते हुए भी मुक्त अवस्था में है। तो इस जीवन में ही, इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में पहुंच सकते हैं अगर हम लोग ये कला सीख लें, कृष्ण भावना भावित कर्म करना शुरू करते हैं। और इस कृष्ण भावना भावित कर्म को ही वास्तव में अकर्म कहा गया है, इसी को अकर्म कहा गया है। जैसे एक स्टॉप लाइट में मान लीजिए, उसको उदाहरण समझ लीजिए, आप एक सिग्नल के स्टॉप लाइट में गुजरते हैं और स्टॉप लाइट देखते हैं तो रुक जाते हैं, नहीं, इसका मतलब क्या है कि आपने ट्रैफिक लॉस को फॉलो किया। और दूसरा व्यक्ति आता है, वो रेड लाइट देखता है, स्टॉप लाइट तो देखता है लेकिन वो रुकता नहीं है, लॉस को ब्रेक करता है। और तीसरा व्यक्ति क्या करता है, वो भी स्टॉप लाइट देखता है, वो भी रुकता नहीं है बल्कि सीधा निकल जाता है। अब पहला व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति है वो जो सकाम कर्म कर रहा है, यानी कि शास्त्रों के आधार पर जो कर्म कर रहा है, तो वो है जो पुण्य अर्जित करेगा, शास्त्रों के आधार पर अच्छे कर्म करके पुण्य अर्जित करेगा। और दूसरा व्यक्ति वो है जो विकर्म करता है, जो स्टॉप लाइट देखने पर भी रुकता नहीं है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस पीछे पे जब उसके भागता है और उसका चलान भी कर देता है, उसको विकर्म कहा गया है, जो शास्त्रों के आधार पर वैदिक शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता। और एक है अकर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म, वो क्या है कि वो व्यक्ति जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ में है या देश के राष्ट्रपति के सामने या कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उसके साथ में है और उसकी गाड़ी आगे चल रही है और पीछे 8-10 गाड़ियां चल रही है, उसमें आपकी भी एक गाड़ी है, वो सब निकल गए, आप भी निकल गए, ट्रैफिक पुलिस ने देखा, उसने सैल्यूट किया, कुछ कहा नहीं, चालान नहीं काटा, उसी सिग्नल को क्रॉस किया है, लेकिन आपके ऊपर वो नियम नहीं लागू हुआ। तो इसी को कहते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। तो जब हम भगवान के साथ भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हुए हम अपने नियत कर्म को निभाते हैं, तो उसी तरह से हम लोग कर्म बंधन से बच जाते हैं, जिस तरह से वो व्यक्ति स्टॉप लाइट से गुजर गया लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने उसको कुछ भी नहीं कहा। तो इसी तरह से जो मेटीरियल लॉज हैं वो लागू नहीं होते हैं फिर भक्त के ऊपर, वो इस जगत में रहते हुए भी सारे कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से वो मुक्त रहता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तो इस तरह से हम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म का मतलब क्या है। तो इस कृष्ण भावना भावित कर्म से हम लोग कृष्ण भावना भावित होते हैं और फिर हम जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आपको? हमने पढ़ लिया, शुरू में आप आए नहीं, शुरू में तीनों श्लोक पढ़ दिया हमने, तीनों श्लोक पढ़ दिया अनुवाद और तात्पर्य के साथ। प्रभु जी ने जब पढ़ा था आप थे उस समय, नहीं आप लेट आए। हाँ बाकी दो श्लोक भी उन्होंने पढ़ा था। आप पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे आइए, पॉइंट क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, शास्त्र का मतलब यह है कि हमारे लिए शास्त्र है भगवद गीता, हमारे लिए शास्त्र है श्रीमद् भागवतम। तो हम लोग जो भक्ति के नियमों का पालन करते हैं वो श्रीमद् भागवत के आधार पर करते हैं। तो वैदिक शास्त्रों की अवहेलना हम भी नहीं करते हैं और भागवत हमारे लिए जो है अमल पुराण है। वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य समितम। तो ये भागवत में लिखा गया है कि वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत है। तो श्रीमद् भागवत में भक्ति की चर्चा है, भगवान की महिमा की चर्चा है, उनकी लीलाओं की चर्चा है, उनके गुणों की चर्चा है, भगवद गीता में उनके संदेश की चर्चा है। तो इसको जो है भक्त जो है अपने जीवन में उतारते हैं और ये शास्त्र जो है भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण। हाँ वो शास्त्र जो वास्तव में इस संसार में बांधने वाले हैं, जैसे कर्म कांड से संबंधित जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वो शास्त्र जो है हमें भगवान की सेवा में नहीं लगाते। हम भागवत का सहारा लेते हैं, भगवद गीता का सहारा लेते हैं भगवान की सेवा में लगने के लिए। कर्मकांड के माध्यम से कोई यज्ञ करता है और स्वर्लोक की प्राप्ति करता है, लेकिन उद्देश्य हालांकि कर्मकांड का यही है कि धीरे धीरे जैसे यज्ञ करने वाले को ज्ञान कांड और अंततः फिर भक्ति के स्तर पर वो लेके आए। लेकिन अगर कोई कर्मकांड में अटक जाता है तो फिर स्वर्लोक का ही सुख प्राप्त करता है और वो भी फिर कुछ समय के लिए होता है। तो बेसिकली हम जो शास्त्र की बात करते हैं या भगवान ने जो बोला है श्लोक बोला है या शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम अकार का, इसका अर्थ यह है कि शास्त्रों की जो अवहेलना करता है, यानी कि भगवद गीता की शिक्षाओं की जो अवहेलना करता है, भागवत की जिस शिक्षाओं की अवहेलना करता है, वो सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। सिद्धि सी बात यह है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान ने जो भगवत गीता में कहा है और जो श्रीमद् भागवत में कहा गया है उसको हमें अपने जीवन में उतारना होगा। और ये है कृष्ण भावना भावित कर्म। भगवत गीता की शिक्षा है कृष्ण भावना भावित कर्म, भागवत की शिक्षा है कृष्ण भावना भावित कर्म। ठीक है, हाँ यही है इसका अर्थ, यही अर्थ है इसका। और कोई प्रश्न किसी का, कोई प्रश्न है किसी का? अच्छा, आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि इस बार हम लोगों ने जन्माष्टमी आपके लिए बहुत विशेष सेवा रखी है ना? इसके बारे में हम लोग पहले से बताना चाह रहे थे लेकिन हमने सोचा कि आपको बाद में बताएंगे। तो ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं दिल्ली में कृष्णा बुक मैराथन जन्माष्टमी के उपलक्ष में। हर व्यक्ति लगा देखिए, हर संस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ पब्लिसाइज कर रहे हैं, है ना? तो हमारा मेन जो काम किया है, हम पब्लिसाइज किसको करते हैं? कृष्ण को करते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना? जब कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये संस्था का नाम ही कृष्ण कॉन्शियसनेस है, तो हमने सोचा कि इस बार हम लोग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में राधा पार्षद जी को सर्वोत्तम भेंट दें इस कृष्णा बुक को बांटकर अधिक से अधिक मात्रा में। तो हम प्रयास करेंगे, ये पहली बार क्योंकि है तो हम लोग उसको बहुत अधिक बड़े स्केल में नहीं करेंगे लेकिन जितना हम हो सके करने का प्रयास करेंगे। चातुर्मास के दिन से हम शुरू कर रहे हैं, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक एक महीने का ये कृष्णा बुक मैराथन होगा। हम चाहते हैं सबके हाथ में कृष्णा बुक हो दिल्ली में, नहीं 1.5 करोड़ की आबादी है तो एक एक कृष्णा बुक तो घर में जा सकते हैं। भगवत गीता आप तो आपने बहुत बांट ली, और भी बांटने का मौका मिलेगा आपको दिसंबर में, लेकिन कृष्णा बुक जो है ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं। तो जिनके पास कृष्णा बुक नहीं है वो आप ऑर्डर देना शुरू करिए। ठीक है अर्चित प्रभु, आप कृष्णा बुक जिनके पास नहीं है उनसे लिए, आप में से कितने लोग कृष्णा बुक नहीं है? सच सच बताइए, झूठ मत बोलिएगा। कृष्णा बुक हिंदी में या इंग्लिश, उस बुक का नाम है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो जिनके पास नहीं है उनको तो सबसे पहले दीजिए, ठीक है? और जिनके पास है उनको बताइए कि आगे और देना है ना? तो इसके बारे में आपको और डिटेल्स देंगे अगली बार, और लेकिन आपको अपना ऑर्डर पहले से प्लेस करना पड़ेगा, नहीं कि साउथ दिल्ली कॉन्ग्रेगेशन को हम लोग कितना मतलब कितनी कॉपीज चाहिए आपको उतना मुंबई से आपके लिए मंगवाएंगे, ताकि अभी से आप प्लान करना शुरू कर दें कि कहां कहां पर कृष्णा बुक दिया जा सकता है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, वी हैव टू पब्लिसाइज कृष्णा। प्रभुपाद ने कहा कि एक भी कृष्णा बुक अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसी समय कृष्ण जो है एक कदम आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो यानी कि भगवान को प्रसन्न करने का, और प्रभुपाद जी ने हमें ये भी बताया है कि रोज सोने से पहले गरम गरम दूध के साथ कृष्णा बुक पढ़ते हुए सोए। इसका फायदा क्या होगा जानते हैं आप? फायदा ये होगा भगवान की लीलाएं जो सुनते सुनते जब सोएंगे तो रात को सपने भी आएंगे। रात को आप भगवान की लीलाएं सुनते सुनते पढ़े सो जाइए या सुनाते सुनाते सो जाइए तो रात को आपको सपना भी अच्छा आए। रात को अगर न्यूज़पेपर पढ़ के सुनेंगे, टीवी देख के सुनेंगे तो रात को वही आएगा सपने। तो रात को सोने से पहले घर में एक नियम बनाइए सबको घर में इकट्ठा करके कि आधा घंटा जो है हम सब जो है आपस में मिलके कृष्णा बुक का अध्ययन करें। एक पैराग्राफ ये पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ ये पढ़ेंगे, इस तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। इस तरह 90 चैप्टर्स हैं कृष्णा बुक में, 90 अध्याय। ये श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के ऊपर प्रभुपाद जी ने समरी दी है, बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी का यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है कृष्णा बुक। 1970 में कृष्णा बुक पब्लिश किया गया था और जॉर्ज हैरिसन ने इसमें काफी सपोर्ट दिया था और करीब $19,000 उन्होंने डोनेट किया था, $19,000 डोनेट किए थे जॉर्ज हैरिसन ने। तो भागवत का जो दशम स्कंद है, 10 कैंटो है, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं 90 अध्याय में, उसी 90 अध्याय को प्रभुपाद जी ने समरी फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया कि कि जिनके पास इतना समय नहीं है कि भागवत का दशम स्कंद पूरा पढ़ सकें, तो कम से कम वो एक ही बुक में सारी कथाएं सारी लीलाएं सुन लें और पढ़ लें। तो बहुत सुंदर है, भगवान के जन्म से शुरू होता है और भगवान की बाल्य लीलाएं हैं, है ना, पौगंड लीला है, किशोर लीला है, यौवन लीला है, सारी लीलाएं हैं उसमें। और किस तरह से फिर किशोर लीला के बाद भगवान कृष्ण जो है मथुरा जाते हैं, मथुरा से फिर द्वारका जाते हैं। तो ये सब आप जो है पढ़ेंगे और जब पढ़ के आनंद लेंगे, तो सबसे पहले तो इतना करिए, आप आपके लिए एक होमवर्क है, करेंगे आप, इससे पहले कि हमें इंटरेस्ट पैदा हो कि हम दूसरों को भी कृष्णा बुक दें, उससे पहले स्वयं इसका आस्वादन करना होगा। जैसे भगवत गीता थोड़ी बहुत सुन लिया अभी, तो आपको लगेगा ठीक है हमने तो सुन लिया, किसी और को भी सुनाना चाहिए, किसी और को भी भगवत गीता देनी चाहिए। तुम्हारी आपसे प्रार्थना यह है कि आज से आप जैसे घर में पहुंचे, सोने से पहले कम से कम एक पैराग्राफ तो पढ़ के सोए कृष्णा बुक से। आप में से कितने लोग करने के लिए तैयार हैं, जिनके पास कृष्णा बुक है, जिनके पास नहीं है अभी उनको कॉपी दे दीजिए, लक्ष्मी की चिंता मत करिए, लक्ष्मी कल भी दे सकते हैं आप, तो ये आप अभी ला कर दे दीजिए कृष्णा बुक सबको, हाथों हाथ सबको दीजिएगा। और उसके घर जाइए, एक पैराग्राफ जरूर कृष्णा बुक पढ़िए, या इंट्रोडक्शन से शुरू करिए, प्रीफेस से शुरू करिए, उसके आमुख से शुरू करिए, भूमिका से शुरू करिए, और उसका धीरे धीरे फिर आप इंट्रोडक्शन में आइए कृष्णा बुक के, है ना, तो बड़ा आनंद आएगा आपको पढ़ के, बहुत अच्छा लगेगा। और एक बार रीडिंग आप शुरू कर देंगे, आदत पड़ जाएगी, डेली अगर आधे घंटे का आप अभ्यास कर लेंगे तो एक महीने में बहुत पढ़ सकते हैं आप, काफ़ी चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। और तब तक आपके अंदर ये भावना जागृत हो जाएगी कि और लोगों को भी कृष्ण भावना भावित बनाना है, ये कृष्णा बुक जो है मैं सबके घर में जाके देना है, ताकि सबको अच्छे अच्छे सपने आए रात को, नहीं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप प्लीज़ कृष्णा बुक दीजिए सबको आज, जिनके पास नहीं है, और जिनके पास हैं वो आज जाकर घर में रीडिंग करना शुरू कर दें। करेंगे आप सब आज रीडिंग, वो भी पढ़ते रहें, ये भी पढ़ते रहें, साथ 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 पढ़िए। भागवत अगर पढ़ रहे हैं तो वो भी आप कंटिन्यू करिए, उसको रोकिए मत, साथ में कुछ सबों के पैराग्राफ से कुछ पढ़ते जाइए, तो उसका भी पूरा लाभ उठाइए, ठीक है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।